आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद आज से शुरू। किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कराने का सरकार ने जारी किया निर्देश। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को आज सम्मानित करेगी सरकार। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा सम्मान समारोह। प्रदेश के 10 जिलों में बनाए जाएंगे 19 नए गो संरक्षण केंद्र। पहली किस्त के रूप में 15 करोड़ 20 लाख रूपये की धनराशि मंजूर। और बीते दिनों हुई बारिश से प्रदेश के कई जिलों में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। 11 जिलों के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ की स्थिति। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज से धान खरीद शुरू हो जाएगी। इसे लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ संभाग के जिलों में अलग अलग तिथियों में धान खरीद होगी। हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में आज से, और लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ 1 नवम्बर से खरीद होगी। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रूपये और धान ग्रेड ए का 2,320 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में किसानों द्वारा धान बिक्री के लिए खाद्य रसद विभाग और अन्य क्रय एजेंसियों के कुल 4,000 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कराने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर दिसंबर 2024 तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड और राष्ट्रीय बचत पत्र जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर को बरकरार रखा है। ये लगातार तीसरी तिमाही है जब इन बचत योजनाओं की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1% तथा किसान विकास पत्र पर 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की महिला शिक्षकों और कर्मचारियों को अब एक बार में ही 30 दिनों की चाइल्ड केयर लीव सीसीएल मिलेगी। अब उन्हें इसके लिए अलग से शपथ पत्र नहीं देना पड़ेगा। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में देश और प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को आज प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस को कुल 22 करोड़ 70 लाख रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान करेंगे। इसके अलावा ओलंपिक और पैरालंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी कुल 70 लाख रूपये की धनराशि दी जाएगी। आज जिन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा उनमें ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल तथा पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले सुहास एलवाई, प्रीतिपाल, अजीत सिंह, पारुल चौधरी, अनुरानी, प्रियंका गोस्वामी, प्राची चौधरी, साक्षी कसाना, दीपेश कुमार और यश चौधरी प्रमुख रूप से शामिल हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। बारिश से प्रभावित मैच के चौथे दिन कल बांग्लादेश की पहली पारी को 233 रन पर समेटने के बाद भारत ने 285 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 26 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
कानपुर नगर के ग्रीन पार्क में चल रहे भारत बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश ने लंच तक 6 विकेट पर 205 रन बना लिया। लंच के बाद पूरी टीम 233 रन के स्कोर पर सिमट गई। टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश ने 35 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए थे। वहीं भारत ने पहली इनिंग में 34.4 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 285 रन का स्कोर खड़ा किया है। जिनका खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन बना लिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कानपुर नगर से मैं राजेश श्रीवास्तव।
प्रदेश सरकार सीतापुर में 200 बेड वाले पुरुष जिला अस्पताल का निर्माण कराएगी। नियोजन विभाग की देखरेख में 107 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 18 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने 10 जिलों में 19 नए गो संरक्षण केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। नए गो संरक्षण केंद्र अयोध्या, आगरा, कुशीनगर, हरदोई, हापुड़, मिर्जापुर, पीलीभीत, बाराबंकी, बांदा और शाहजहांपुर जिले में बनाए जाएंगे। इन केंद्रों के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 80 लाख रुपए की दर से कुल 15 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि सरकार की तरफ से मंजूर की गई है। प्रदेश सरकार ने गो सेवा आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति कर दी है। झांसी के श्याम बिहारी गुप्ता को गो सेवा आयोग का अध्यक्ष और कुशीनगर के जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह तथा बस्ती के महेश कुमार शुक्ल को उपाध्यक्ष नामित किया गया है। वहीं मुरादाबाद के दीपक गोयल, महोबा के राजेश सिंह सेंगर और फिरोजाबाद के रमाकांत उपाध्याय को सदस्य बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर पक्षकारों को ईमेल से जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है। साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है। कल मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर हिंदू पक्षकारों ने अपना जवाब दाखिल किया। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है। इस अवसर पर रक्तदान करने और इसे लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सकों का कहना है कि 18 से 65 वर्ष की उम्र के लोग जिन्हें कोई असाध्य रोग नहीं है और जिनके हीमोग्लोबिन का स्तर 12.5% से अधिक है, वो रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान से कई जरूरतमंदों को नए जीवन का उपहार मिल सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग, हेल्पेज इंडिया और वरिष्ठ नागरिक महासमिति के संयुक्त तत्वावधान में लखनऊ के गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में विशेष समारोह आयोजित करेगा। कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बीते दिनों हुई बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राप्ती, सरयू और रोहिन नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गोरखपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान राप्ती नदी का जलस्तर 55 सेंटीमीटर बढ़ा है और नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोरखपुर में सरयू नदी भी खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रदेश के राहत विभाग के मुताबिक कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, लखीमपुर खीरी और गोंडा सहित प्रदेश के 11 जिलों के कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उधर कुशीनगर जिले में भी पिछले दिनों हुई बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही अधिक बारिश होने से भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली मंदिर परिसर में पानी भर गया है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर, रामाभार स्तूप परिसर सहित माथा कुंवर बुद्ध मंदिर परिसर में वर्षा का पानी भरने से पर्यटकों को मंदिर तक पहुंचने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पानी मंदिर के अंदर बुद्ध प्रतिमा तक पहुंच गया है। मंदिर में स्थापित 10.5 फुट ऊंची बुद्ध प्रतिमा भू स्पर्श मुद्रा में है। मंदिर में जल जमाव से प्रतिमा के क्षरण का खतरा बढ़ गया है। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर।
प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार आज वानिकी नववर्ष का शुभारंभ करने जा रही है। अपनी तरफ की इस अभिनव पहल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को वानिकी नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि अधिक से अधिक वनों का आच्छादन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने में काफी कारगर हो सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद आज से शुरू। किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कराने का सरकार ने जारी किया निर्देश। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को आज सम्मानित करेगी सरकार। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा सम्मान समारोह। प्रदेश के 10 जिलों में बनाए जाएंगे 19 नए गो संरक्षण केंद्र। पहली किस्त के रूप में 15 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि मंजूर। और बीते दिनों हुई बारिश से प्रदेश के कई जिलों में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। 11 जिलों के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ की स्थिति। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।